ये बातें बताई कितनी बढ़िया कि खास बात है कि बिन गुरु गुम निश्चय बिना रे कहे कहावे को। गुरु तत्व का भेद तो समझा नहीं है खुद ने और लोगों को गुरु तत्व की बातें बतानी चालू कर दी। कहे कहावे को ये जो कहने वाले हैं लोगों से कहलाते हैं वो सब झूठे हैं। बिन गुरु गम गुरु तत्व को सार क्या है गुरु तत्व का ये जाने बिना ऐसे कहने वाले महाराज रामदास सूरज के हरिरामा उन जीव सूर्य देखत रही है दूर। ऐसे केवल गुरु की महिमा का वखान तो बहुत करते हैं लेकिन गुरु तत्व की बातों पर ध्यान देते नहीं है, पालना खुद नहीं करते हैं, केवल लोगों को बताते हैं गुरुधर्म पालन करो। केवल आप गुरुधर्म पालन करो हमारे लिए, मैं पालन करूं चाहे जरूरत नहीं। अरे यदि मैं गुरुधर्म पालन नहीं कर रहा हूं और आपसे कहूंगा तो यही पर बात कट हो जाएगी, आगे बात परमात्मा तक पहुंचेगी नहीं क्योंकि मेरा संबंध ही नहीं आगे तक। अब संबंध परमात्मा का नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त होंगे वो। यदि संबंध जुड़ा रहेगा तो धीरे धीरे चलते जुड़ते 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 पहुंच जाएंगे, लेकिन संबंध नहीं है तो इसकी सच्चा संबंध साक्षात ब्रह्म परमात्मा से ही गुरु तत्व के माध्यम से जुड़ा जुड़ सकता है। क्योंकि हम तो सीधे में परमात्मा तक पहुंच सकते नहीं लेकिन पहले जो महात्मा पहुंच चुके हैं उनसे जुड़ते 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 जो आज हमारे को मिले हैं उनसे जुड़ करके भी हम उनके साथ में कड़ी जोड़ करके अपना संबंध कायम कर सकते हैं। बिन गुरुगम निश्चय बिना रे कहे कहावे को। राम भगत गुरुगम बिना काल रूप अगखान। गुरु तत्व के विनाश सारा का सारा इस संसार महान पाप का रूप है, नरक में ले जाने वाला स्थान है। सपने मुख न दिखाई हो अर्ज हे भगवान। महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों ने सपने में ही मुंड बुद्ध बताई जो माने तो आगड़ा ही राख जो आगड़ा राख। शिष्य अधीनता के साथ में शिष्य अधीन यूं कहो लक्षण ग्रंथ प्रमाण राखो अपनी अवध में इच्छा गद सुखदान। महाराज मैं और तो कुछ जानता नहीं, क्या धर्म होता है क्या कर्म होता है क्या लोक है क्या परलोक है, परंतु इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं बस। बस अब आपकी इच्छा के अनुसार आप मुझे ले चलिए, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर रहे। गुरुदेव मुझे कृपा करो अज्ञान माया पर रो, उस परमात्मा का बोध मुझे जैसे आसानी से हो जाए वो तरीका आप कृपा करके काम में ले लीजिए। मैं तो अबोध हूं जानता नहीं, आप कृपा करके नुगरे लोगों से मुझे हमेशा बचा करके रखना और अपने शरण में लेकर के मेरा उद्धार कर देना। वंदन निकंदन आनंद कंद आपको बार बार वंदन है, अपार अनगित गिनती बार आपको नमस्कार है। जिज्ञासी इस प्रकार शिष्य जब गुरु महाराज के शरण में आता है वे कृपा करके इस जीवात्मा को कहते हैं भैया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, जाना आने का काम करेंगे खुद परमात्मा ही, परमात्मा खुद काम करेंगे, जाना आने का जहां जाना पड़ेगा तो वे आएंगे हमें जाना नहीं पड़ेगा। जब किसी भक्त के ऊपर संकट आया है तो भक्त को जाना नहीं पड़ा है, खुद दौड़ करके भगवान को आना पड़ा है। जब हाथी डूबने लगा था समुद्र में तो हाथी दौड़ करके भगवान के पास में नहीं गया, अभी तो गरुड़ छोड़ हरिधायो क्रीड़ा समंदु गज अंधु ग्रह फंदु रचिय करशो गंधु डूब जिंदु सुन बंधु सचिय रडो कांधु हरिहरंधु मेट दंधु ब्राह्मी। ऐसे भगवान को दौड़ करके आना पड़ता है। जब तो शिष्य को जब ज्यादा ही उत्कंठा होती है तब भगवान को उनके पास में आना पड़ता है और हमारे सामने भगवान अनेक रूप से विराजमान हो जाते हैं। उस परमात्मा की पहचान के लिए पांच रूप बताए हैं, पांच रूप में हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। पांच रूप है पर व्यू विभव अर्च अंतरागत पंच ब्रह्म वय नाम है भगत पुंज गुरुदेव सर्व सिद्ध प्रगट कर्ण प्रणाम है। जब हम गुरु महाराज के शरण में चले जाते हैं तो शिष्य की योग्यता को देख करके गुरु महाराज परमात्मा के पांच स्वरूप हमारे हृदय में, शिष्य के हृदय में ये प्रकट कर देते हैं। बस अब जिस किसी भी रूप के साथ में अपना संबंध जोड़ो, तुम जोड़ दो, जिसमें तुम जुड़ सकते हो, जो आपको प्यारा लगे। ऑप्शन देते हैं ना, सवाल करते हैं, पूछते हैं में भाई ये है, ये है, ये है, क्या है, एक सही है, तीन चार उत्तर गलत है। तो भगवान गुरु महाराज ये पांच परमात्मा के अवतार का जो भाव है हमारे हृदय में प्रकट करते हैं कि इसमें जो तुम्हारे ठीक लगे वो एक जो ठीक लगे वो ही साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, उससे भिन्न है ही नहीं। प्रेमी सज्जनों, थोड़ा वाणी का प्रसंग चल रहा है, अब है थोड़ा लुका सूखा प्रसंग है, पसंद आवे नहीं आवे, जैसा भी आपने समय दिया है, समय दे करके तो सुनते रहना, क्योंकि अब रसीली बातें तो इसमें कहां से मिलेगी। जो संतों की बातें हैं, जीव को समझाने के लिए जैसी बातें बताते हैं वो पूरी समझ में नहीं आती, जितनी समझ में आती है वो भी पूरी बता नहीं सकते, जैसी है बस उसको ही महापुरुषों का प्रसाद मान करके उसमें संतोष कर देना। तो पांच प्रकार का भगवान का अवतार शिष्य के हृदय में गुरु महाराज कर देते हैं, उसकी सुगमता के लिए जो ठीक लगे उसी को तुम अपना लो। पहले पर, व्यू, विभु, अर्थ और अंतर्गत, अंतर्यामी। एक तो पर अवतार, एक व्यू अवतार, एक वैभव अवतार, एक अर्चा अवतार, एक अंतर्यामी अवतार, ये पांच अवतार है, पांच रूप है। मतलब किसी के साथ में कोई कोई तो तुम्हारे को इसी में बात मिलेगी लगेगी ही। पर ब्रह्म कौन सा है? राम अनाम अनाथ अजूनी पर ब्रह्म नमो सदाई, पर अवगत गत ऐसे जानत गुरु बिन नाए कदाई। पर ब्रह्म तो वो है जो राम जी महाराज, जिनका कोई नाम नहीं है परंतु सब नाम वाले हैं, जो जिसका कोई नाथ स्वामी नहीं है। अनाथ कौन सा? अनाथ यानी कोई स्वामी नहीं होता, तो परमात्मा का कोई स्वामी नहीं है, वो अनाथ है। ऐसे अनाथ यो नहीं कि भाई अब वे गरीब है बेचारा कहीं करता वेला, अनाथ मतलब उनके ऊपर उनका कोई स्वामी नहीं है, सबके नाथ वही है, सबके प्रेरक वही है, जिनकी जन्म नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, उसी को ये जो ब्रह्म का अवतार है, उस ब्रह्म के अवतार को हमेशा वंदन है, उसको पर ब्रह्म अवतार कहते हैं, ये पर साक्षात ब्रह्म का अवतार है। तो अब जब जीवात्मा रात दिन जन्म में मरने के चक्र में पड़ा हुआ शिष्य रूप में बनकर के आत्मनिवेदन करता है गुरु महाराज के पास में जाकर के, तो समर्पित भाव से उस ब्रह्म के साथ में ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए निवेदन करता है, तब बताते हैं कि हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है, पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, उनको नाम के द्वारा प्रकट कर लो। परमात्मा कैसे हैं? जो अनामी हैं, अजूनी हैं, अनाथ हैं और साक्षात सबके स्वामी हैं। बस ये गति गुरु महाराज से प्राप्त कर लो तो अपने अंदर वो ही परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, अपने अंदर ही हो जाएंगे, तो वो की वो शक्ति परमात्मा अपने अंदर प्रकट कर देंगे, और जहां है वहीं उनको प्रकट होना पड़ेगा, बाहर से आना नहीं पड़ेगा कहीं से। अब रहा विभु अवतार। विभु अवतार में वो चीज है कि जितना संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो भगवान का अवतार है, सगुण अवतार है वो सब का सब परमात्मा का। पहले तो वो तो निर्गुण रूप है, लेकिन उसका दिख आंखों के सामने दिखाई देने वाला, पर ब्रह्म का आंखों से रूप दिखता नहीं है, लेकिन विभु का रूप आंखों के सामने दिखाई देता है। कि सारा जगत का जितना फैलाव दिखाई दे रहा है, जो 24 अवतार भगवान के हुए हैं वे विभु अवतार में कहलाते हैं। शनकादिक अवतार जो लोगों के ऊपर संकट पड़ने पर भगवान ने अवतार धारण किया, वे सब विभु अवतार में शामिल है। शनकादिक व्यास जी, दत्तात्रेय जी, कपिल जी और यज्ञ अवतार, हयग्रीव भगवान, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नृसिंह अवतार, वारा अवतार और ऋषभ अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार है। अब बताइए सब के सब अवतार जो हुए हैं उसी परमात्मा के हुए हैं, तो इनमें ब्रह्म का स्वरूप देखना यह है व्यू ब्रह्म, मतलब इनमें भी आप ब्रह्म का स्वरूप देखोगे तो परमात्मा के साथ में आप पहुंच जाओगे। अब इस दूसरे नंबर की कड़ी में आकर के आप पहली कड़ी से परमात्मा पहचान लेंगे कि इसको मेरे पास में आना है, लेकिन इसकी पहुंच वहीं तक है, मतलब इनके चरित्र सुनने में, इनकी लीला सुनने में यदि हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हृदय में जिज्ञासा है गुरु महाराज के उपदेश के माध्यम से कि मुझे तो उस परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, तो इनमें रुचि है तो वे कृपा करेंगे उनके माध्यम से उस परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ देंगे। पहले यहां जुड़ेंगे लेकिन बाद में वहां जुड़ जाएंगे, आखिर में वहां पर पहुंच जाएंगे। अब इसके लिए बद्रीनाथ भगवान है, मन्वंतर हुए हैं, वामन जी हुए हैं, ध्रुवर वरदान है, पृथु अवतार है, परशुराम अवतार है, ये जितने भी अवतार हुए हैं ये सब के सब अवतार उसी परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने के लिए हैं। भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त जिस रास्ते के ऊपर चलता है मैं एक बात का ख्याल रखता हूं, मेरे भक्त के सामने किसी प्रकार कोई संकट नहीं आए। जिन कल्याण करने का जिसने निश्चय कर लिया है उसकी बात यह है केवल खावण ने घी खिचड़ी, ऑर्डर ने है सोड़, चेलो पूछे गुरुजी ने मुक्ति आई है कि और, संत महात्मा के पास में भक्त लोग जाते मुक्ति की बात पूछते कि महाराज जीव की मुक्ति कैसे बताइए। कोई नया चेला बन करके आया महात्मा जी के पास में, घर में तो होली दिवाली लाभ सी लाश पड़ाशा तेल ये था, बराबर लू के टुकड़े भी हाथ में नहीं आते थे, खाने के लिए नहीं मिलते थे। अब संतों के पास में आ गया तो रोज रोज नए नए माल खाने के लिए मिले कि एक दिन कोई आदमी पास में नहीं था, चेले जी ने गुरु जी से पूछा महाराज रोज रोज लोग मुक्ति मुक्ति पाते, मुक्ति किधे कहे है, मुक्ति किसको कहते हैं, खावण ने घी खिचड़ी रोजना घी खिचड़ी खावने वाते मिल रही है, ओढ़ने वाते सोड़ बिछाने वाते पथरना है, बस इन्हें नाम मुक्ति है, और कोई मुक्ति या करे है। ऐसे चेले की जिसमें जिज्ञासा नहीं है, केवल बाहरी भौतिकवाद है, वो शिष्य कुछ प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन सच्ची जिज्ञासा है तो इन सगुण अवतारों के माध्यम से भी महाप्रभु कितनी ढील दे दी बताए, इनके द्वारा भी वो वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जुड़ा रहना चाहिए गुरु महाराज के माध्यम से, बिट लागा सो नीपना, जल पड़िया किंद जाए, गुरु त्यागे हरिकु बजाय निश्चय नरका जाए। रामदास महाराज ने लिखा है कि जो एक आम का पेड़ है उस पेड़ के फल लगा हुआ आम का नदी के किनारे पर है, पास में पानी भरा हुआ है खड्डे में, वहां पर पेड़ खड़ा, पानी अच्छा मिलता है, पेड़ में फल लगते हैं, फल पक जाते हैं, लेकिन फल पकने में काफी टाइम लगती है, कैरी लगी, कैरी ने विचार किया और ये पानी पेड़ से मिलता धीरे धीरे देता है, पेड़ तो एकाएक पूरा पानी एक साथ में देता है, एक साथ जल्दी पक जाऊंगा, ऐसे वो आम को छोड़ करके टूट करके पानी में गिर पड़ा और नीचे गिरने के बाद में पकड़ा तो गया दूर है, वो सड़ करके खत्म हो गया। बीट लागा सो नीपना, एक छोटा सा बीट है, बीट उस बीट से जुड़ा रहेगा तो आम का फल पक जाएगा और पानी में गिर करके उस खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी को छोड़ करके बहुत अच्छे ऊंचे से ऊंचे साधन करेगा निश्चय नरक जाए, दूसरे कोई नरक में जाए कि नहीं जाए, लेकिन वो तो नरक में जाएगा ही, सर्टिफिकेट देते हैं बताइए निश्चय, और तो क्या करे, संदेह बिल्कुल नहीं इसमें। तो वहां भगवान कहते हैं मैं सदा उनके आगे आगे चलता हूं, व्यू भगत जन हेता, जितने भी भगवान मेरे ही अवतार हुए ना, भगवान के वचन मेरे ही अवतार हुए हैं, मेरे भक्तों के लिए हैं, मैं उनके आगे आगे सदा चलता हूं, मैं उनकी सहायता के लिए सुदर्शन को उनके पास में रख देता हूं, सदा उनकी सेवा किया करता है, मेरो विभव दिखाऊं कर गए, मैं अपना हाथ पकड़ करके उनका मेरा अपना वैभव दिखाया करता हूं, पीतम्बर से छाया करता हूं, उनसे कोई वैर करता है तो वो मेरे साथ वैर होता है और वो आदि अंत तक अपना दुख भोगता रहता है। जनित गोत लेत बड़े अंटा। संसार में देखा जाता है कोई किसी आदमी के साथ में यदि कोई बुरा बर्ताव करता है मौके आने पर वो भी उसका बदला जरूर देता है। मौका है कौन चौकी भाई बदलो पद लिए बिना छोड़े कोने। तो भगवान कहते हैं कि संसार के लोग भाग भी मौका आने पर अपना बदला कोई लिए बिना नहीं रहते हैं तो मेरे भक्त से कोई वैर करेगा तो मैं उससे बदला नहीं लूंगा क्या। जनहित गोत लेत बड़ अंटार। मैं अनुसमर्थ कैसे, मैं असमर्थ थोड़े ही हूं जो मैं देखता ही रहूं उनके साथ में किसने दुर्व्यवहार किया और मुझे पता ही नहीं चले। मैं करता बाद में पहले देखता पहले हूं मैं। इसलिए रोमकूट ब्रह्मंड कोट जही साध हेत वे जैसे इस एक रोमकूप में मेरे इतने ब्रह्मांड बसे हुए हैं वो सब के सब ऐसे सत्पुरुषों की सेवा के लिए हाजिरी में सदा मौजूद है। इस प्रकार ये विभु ब्रह्म पर ब्रह्म और पर ब्रह्म के बाद में विभु ब्रह्म हुआ तो अब व्यूह ब्रह्म दूसरे नंबर व्यूह पर व्यूह विभव अर्चार अंतरागति ये चार नाम है ना। अब तीसरे नंबर में वैभव नामक ब्रह्म है। वैभव मतलब जो कुछ भी पदार्थ संसार में बने हुए हैं खाने पीने से लेकर के ओढ़ने बिछाने के सुख भोग के संपत्ति सुख संपत्ति के रत्न इत्यादि जितने भी वैभव के पदार्थ हैं जिनसे हम धनवान कहलाते हैं। अब सुन कहूं विभव विस्तारा गुरुगम ज्ञान सर्व आधारा जन उपदेश भगत विद पाई ता प्रसाद ब्रह्म ठगराई। जो कुबेर जी जो मेरे हैं भगवान के जो भक्त कुबेर जी तो कुबेर जी जो धन संपत्ति के स्वामी हैं तो वे भी भगवान की आज्ञा पा करके ही संपूर्ण धन संपत्ति संसार में देते रहते हैं। तो वो देते रहते हैं तो मेरे स्वरूप के साथ में उसका भी संपत्ति यदि उनको मनुष्य को दी हुई संपत्ति को या वैभव को पदार्थ को प्राणी मेरे साथ में जोड़ देता है अर्थात मेरे लिए उसका उपयोग करता है आप खुद भी उपयोग करें तो मेरे लिए समर्पित करते हुए करें मतलब भोजन भी करे है तो भगवान को भोजन कराने के लिए करे आप अपने लिए नहीं करे। ध्यान रखना यहां पर थोड़ी भूल होती है हम लोगों से। हम अपने लिए खाते हैं लेकिन वो कहें खुद खाओ तो खुद लेकिन भगवान को अर्पण करके भगवान के लिए सेवन करो तो आपका भी काम बन जाएगा और भगवान का ही काम बन जाएगा दोनों का काम बन जाएगा। वो वैभव दुखदायी नहीं होगा। यूं तो माया संपत्ति है वैभव हमारे पास में होता है तो जीव को अंधा कर देता है वो उसको होश नहीं रहता मनुष्य को। आत लात उर देत है माया अधिष्ठित ना गमन पाद ग्रीवा झुके मग जाई ढह जाए। जिस समय लक्ष्मी आती है आते समय छाती में लात मारती है यहां पर आंखें ऊपर हो जाती है कुछ दिखता ही नहीं है कौन है मेरे पाँव में ठोकरों में कोई मरो चाहे कोई। अरे ऊपर देख करके चलते हैं कितनी कीड़ी मरती है मकोड़े मरते हैं चींटे मरते हैं पता चलता है क्या। इसी प्रकार कौन आ गया जो ज्यादा धनवान हो गया तो उसको अहंकार हो जाता अहंकार में नीचे वाले कुछ दिखते नहीं तो आते समय उसने छाती में लात मारी है तब दुनिया दिखती नहीं है लेकिन मम माया दुलती है दो लात वाली है आते समय लात मारी छाती में और जाते समय यह लात मारती है बड़े इस समय हे राम रे हे भगवान हे राम जी तू है रे नीचे घाटे जने पादरी हो जावे पर जो बाछी ऊंची पवे दिखा पड़ा। गुरु महाराज इस विषय में एक दृष्टांत बताया करते थे। एक कोई महात्मा जी हरि भजन करने वाले भजनीक महापुरुष उनका स्वभाव था जहां कहीं भी जाते कोई भी मिलता कहते बोलो राम बोल बोलो राम बोलो राम बोलो राम किसे बुलाते रहते थे और कोई सज्जन लोग बाबा जी बोलते थे कि राम महाराज बाबा राम महाराज बोलो राम महाराज बोल राम बोल राम बोलते रहते थे। उनका स्वभाव है कैसे कैसे किसी के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हो तो सही उसका इतना तो कम से कम समय सार्थक हो गया इतनी जवान सार्थक हो गई इतना ये पवित्र हो गया ایسے وہ ہمیں سب بلاتے رہتے تھے. ایک دن کی بات میں پربھات کال میں جلدی ہی کسی نگر میں گئے, وہاں پر ایک سیٹھ جی کی دکان پہلے پہلے ان کو سامنے ملی. سیٹھ جی جلدی ہی دکان پر آ کر کے جنہوں نے دروازہ کھول دیا, اپنی گدی پر بیٹھ گئے اور بہی کھاتہ کھول کر کے حساب کتاب لکھنے لگے. جب تک کوئی گراہک نہیں آوے تب تک وہ اپنا بہی کھاتے کا حساب کتاب دیکھ لیتے. ایسے وہ حساب کھاتے میں دیکھنے میں لگے ہوئے تھے مست. دروازے پر کھڑے ہو کر کے بابا جی نے کہا, بولو سیٹا رام, بول جو سیٹا رام. دو بار چار بار بولا دے کانم تو بریوڑا سنی جی کونے سنی ہی کونے. وہ دیکھ مکتو آیا کوئی صبح سانی, ابھی تو گراہ کی تو ہوئی کندر پہلے مکتا نہ دے وہاں دن خراب ہو جائے. بولے بتیا بولے سیٹ جی بولے ہی نہیں, پانچ سات بار دس بیس بار بولے لیکن وہ تو جواب دے تو. سیٹ جی نے بچار کیا کہ بولنا نہیں, اور بابا جی نے بچار کیا کہ دوسرے لوگوں کو تو وہ سجن لوگوں سے رام بولا ہوئے اس میں کیا بلی آ رہی ہے, نہیں بولے اس سے بلا کے چھوڑوں گا میں, نہیں بولنے والے سے بلانا اسی میں بلی آ رہی ہے, بولنے والے کو بلا کیا بلی آ رہی ہے. اس پرکار یہ نہیں بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں میں بلا کے رہوں گا. مہاتما جی پہنچوان تھے اچھے, سدھ پرش سدھ پرش تھے, ارے ایک پرکار کے کھمتا تھی ان میں, کام کچھ لیتے نہیں تھے لے یوگتا سب تھی. اب وہاں سے چلے گئے جاتے پھر بھی بولوا کئی بار کلتے گئے بولتے گئے, آخر میں شیٹ جی سے راہ نہیں کیا, کہہ رہے کیوں صبح سانی ماں تو کھاوے شرم کو نہیں آوے, جا کہ تجھا گھر گھڑی ہے بھاگ بیٹھے سو. دوسری بولتی باتیں لیکن رام کا نام نہیں بولا گیا. مہاتما جی نے کہا کہ نہیں ان سے ضرور بھگوان کا نام بلائیں گے اپن. یہ بےچارا نام کا پراپت کرنے کا ادھیکاری ہے, نرک میں نہیں چلا جائے. اگلے دن دوسری یوجنا مہاتما جی نے اپنی بنا لی. سیٹھ جی کا نیم تھا صبح جلدی اندھیرے اندھیرے اٹھتے, دھوتی گمچھا لے کر کے لوٹا لے کر کے باہر ندی پر چلے جاتے تھے اسنان کرنے کے لیے. تو وہی تو ون میں سوچ جانا, ون میں جانا گھومنا بھی ہو جائے گا اور وہیں اسنان کر لیں گے, گھر پر پانی بھی خرچ نہیں ہوگا اور اس پرکار صبح کی مارننگ واک ہو جائے گی, کہتے ہیں نا صبح گھومنا ہو جائے گا. ایسے صبح جلدی جانے کی, چار بجے اٹھ کر کے بعد میں بن میں جانے کی ان کی نت نیم کی کریا تھی. اگلے دن صبح جلدی جو ہی سیٹھ جی اٹھ کر کے بن میں گئے, باہر گاؤں کو پار کیا کہ نہیں کیا, پیچھے سے وہ بابا جی تھے نا وہ سیٹھ جی کا روپ بنا کر کے گھر پر آ گئے. سیٹھ جی کے روپ میں آ گئے, ہو بو کا وہ روپ ویسے کے ویسے کپڑے اتنا گنا قد ویسا رنگ, وہ دھوتی گمچا پورا ویسا ساتھ میں لے لیا, پہرے دار جو گیٹ مین واچ مین کھڑا تھا کہا سیٹھ جی آپ جلدی آ گئے, کیا بات ہوئی؟ سیٹھ جی نے کہا, بڑے مہاتما جی نے کہا, ارے بھائی کل میں ایک بات بتانا بھول گیا, یہاں پر ایک بیرو پہ آ گیا, گاؤں میں بیرو پہ آ گیا ہے, وہ بیرو پہ خوب بہت نکلچی ہے, چاہے جیسے لوگوں کی نقل بنا لیتا ہے, تو وہ کہیں میری نقل بنا کر کے اپنے گھر میں نہیں آ جائے, اس لیے آج میں ندی پر نہیں جا کر کے ہی نہ ہوں گا, اگر دروازے پر بیرو پہ آ گیا تو اس کو اندر آنے مت دینا, ڈنڈے مار کر کے باہر بھگا دینا. ٹھیک سمجھ گیا نہیں؟ ہاں شیخ صاحب بالکل سمجھ گیا, اب تو میں پہلے تو کبھی نیند بھی لے لیتا, اب نیند نہیں لوں گا, لٹھ لے کر کھڑا رہوں گا, ہاں تو صحیح دیکھ لیتا ہوں کیسا اندر گھسے گا. اب وہ تو سیٹھ جی تو اندر چلے گئے, نانا دھونا کیا اور پاٹ پوجا کرنے کے لیے اوپر مالے بیٹھ گئے. سیٹھ جی تو اپنے نیم کے انوسار ہمیشہ جتنا ٹائم لگے ٹائم لگا لو, وہ نہا دھو کر کے گیلی دھوتی کندھے پر سوتی ہوئی اور آ رہے وہاں سے سہج بھاؤ سے پھاٹک کے ہاتھ لگایا گیٹ کھولنے لگے, اتنے میں پہنچ گیا پہرے دار سامنے جا کے, بےمان یہاں کیسے آ رہا ہے؟ سیٹھ جی کہ مجھے بےمان کہنے والا یہ کون ہے, بھانگ پی لی کیا صبح صبح, ماتا خراب ہو گیا؟ ارے تیرا ماتا خراب کیسے ہو گیا, مجھے سیٹھ کو تم بےمان کہہ رہا ہے, شرم نہیں آ رہی ہے؟ اے گوبند بیٹے کا نام, بولے بیٹا گوبند ادھر, آج اس بےمان نے مجھے اس پرکار گالی دے دی, اس لیے تھوڑا لٹھی لے کے آنا. اوپر سیٹھ جی نے تو گوبندے کو بھی چیتا کر دیا تھا کہ کوئی بے روپیہ آ جائے گا, بے روپیہ کا آتے ہی سماچار ملا, वो गोविंद ने आवाज लगाई, अरे मुझे मेरा बाप बनने वाला कौन है नालायक, जो मुझे मेरे बाप तो यहाँ पर बैठे घर में, और ये दूसरा कौन मेरा बाप बन गया। पहरेदार से कहा, अरे तुम खड़े रहना, इसको पकड़ के रखना, कहीं भाग नहीं जाए, आज थोड़ी इसकी अच्छी तरह पिटाई करो, पूजा करो। दौड़ करके आया, लाठी लेकर के दोनों मिलकर के अच्छी तरह उनकी शेर जी की धुनाई कर डाली। शेर जी हु क्या गया, अरे शेर जी तुम्हारे अंदर बैठे हैं, कहाँ हैं? आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। हाँ बेटा क्या बात है? वो देखो मेरे पिताजी के ऊपर बैठे हैं और तू मेरा बाप बन रहा है, शर्म नहीं आ रही है? चल भगे से होटा मार करके बुरी तरह भगा दिया, मौज चमचम करने लग गया। कदी मार खाएड़ी को नहीं, मौज करेड़ी ऐसी में रेवड़ा ना, आज होटा पड़े ना दोहरा लागे भाई। लेकिन कोई ना कोई बेरूपी आएगा घर में, गजब हो गया, अब कहीं करा। अब वो वहां से रोते 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 थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखा देगा, तो हाथों हाथ रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, कोई न कोई बेरूपिया घर में आ गया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, थानेदार साहब ने बुलाया, कौन है बेरूपिया? सिपाही को भेजा, जाओ बुला के लाओ, पकड़ करके लेके आओ, मेरे पास हाजिर करो। सेठ जी को जानते थे, अब वो सेठ जी वहां पर पहुंचे। महात्मा जी जो सेठ बने थे उनको बुलाया सिपाही ने, नीचे उतर करके आए, आपको थानेदार साहब ने बुलाया है, चलो थाने चलो। वो थाने चले गए, अब वो तो आगे सेठ वो खड़ा है और ये इधर से महात्मा जी सेठ बने, वो पहुंच गए, दोनों आमने सामने खड़े। डुप्लीकेट कॉपी एक ही असली, एक ही असली, पता ही नहीं चला दोनों में किसी, कोई पता नहीं चले असली कौन सा है। थानेदार साहब भी टोपी उतार पर माते हाथ फेरेगा, असली कौन सा है सेठ में, किन्ने पूछो बे कौन है असली, क्या पता। अब वो थानेदार साहब ने कहा, भाई मुकदमे तो कई मेरे पास में आए परंतु ऐसा मुकदमा आज तक नहीं आया है, अब मैं क्या निपटाऊं, ये मेरे बस का रोग नहीं है, चलो कोर्ट में चलो, कोर्ट में पेशी की जाएगी। फाइल भेज दी कोर्ट में, कोर्ट में जज साहब के पास में फाइल पहुंच गई। जज साहब ने कहा, भाई बुलाओ, सेठ जी खड़े वहीं रहे और महात्मा जी सेठ बने उनको बुलाया, दोनों सामने खड़े हो गए। अब जज साहब भी देख करके दंग रह गए, कभी असली ये है कि असली ये है, अभी रिपोर्ट करा के ये कहें कि ये कहें, पता नहीं चलता है किन से क्या कहें। अरे तुम दोनों में असली कौन हो? वो ही कहे मैं असली, वो कहे मैं असली। अब निर्णय कैसे हुए? जज साहब भी चक्कर में पड़े, कुछ कर नहीं सके, बैठ गए सोच विचार में। महात्मा जी सेठ ने कहा, जज साहब असली बात का निर्णय करने का मैं उपाय बताऊं? हाँ बोलो, क्या बात है सेठ जी? बात ऐसी है कि 5 साल पहले हमारे मेरे बेटे की शादी हुई थी, बेटे की शादी हुई, उस शादी में कितने रुपए का सोना आया, कितना घी आया, कितना तेल आया, कितनी चीनी आई, अनाज आया, कितना कपड़ा आया, कितना कुल खर्च लगा, ये हिसाब जो बता दे वो तो है असली, दूसरा है नकली। ये बात तो ठीक है ना? अब पर असली सेठ तो याद को नहीं, हमेशा पाठ थोड़ी करियो, उसको तो याद नहीं, और महात्मा जी को बही जहां पड़ी वहां पर पड़ी पड़ी दिखाई दे रही है। सेठ जी ने कहा, महाराज जी का हिसाब बही में लिखा हुआ है और अमुक जी को बही रखी हुई है, जाओ बही लेकर के आओ। गए वहां से बही लेकर के आए और बही दे दी जज साहब को। जज साहब देखो साहब, जज साहब ने बही खोल ली और कहा, भाई जो हिसाब बता दे वही असली सेठ, अब बताइए कितने रोकड़ रुपए खर्च हुए, कितने का सोना चांदी गहना गांठा, कितने अनाज वगैरह सब आया, नौकर चाकरों को कितना दिया, सफाई में कितना लगा, रसोइयों को कितना दिया, हिसाब हिसाब बताओ, जो बताएगा वो असली सेठ है। अब वो तो असली सेठ जो है बेचारा, वो तो खड़ो देखने लग गया, वह तो धुड़े रही भगवान, ऐडी मैंने कही था एक, मैं तो पूरी याद करना आ जाता लिस्ट एकदम बराबर, और अभी आज बता दे दो, परंतु आज तो कुछ भी थी। अब महात्मा जी को तो वो कागज पड़ा वहां पर और सामने दिखाई दे रहा है, एक से लेकर आखिरी तक ए टू जेड पूरी लिस्ट आने पाई से उनको सुना दी। अब वो असली लिस्ट सुनाने के बाद में जज साहब ने देखा, ये सेठ असली है, वो नकली है बेईमान, अरे पकड़ो इसकी हंटर मारो बेईमान को। इतना धोखेबाज, वो रूप भी ऐसा सांग बनाया जिसको चेहरे से पहचान नहीं सकते। अब खूब उसकी पिटाई करने लगे और पिटाई करते करते निकाल दिया बाहर। वो कह बाबा छोड़ो, अब मैं कदई पाचुन गांव में को नहीं आऊं, पाचो कदई मुंडो नहीं करूं, कोई मने घर बार चेन के महाराज लार छोड़ो जी की बात। दाया थारे चाच राबड़ी कुत्ता तो लार छोड़ा जी की बात, पिटाई का फंद छुड़ाओ। मारपीट खाते खाते आखिर में सेठ जी उनके सिपाहियों के पैर पकड़ करके छूटे, अब वो निकल जाओ फिर यहां कमी मत आना, इधर मुंह मत करना बेरूपी, जो कम सा अब कभी नहीं आऊंगा। ऐसे वो वहां से निकल गया। वो अब मोर पूरा पिलपिल कर रहा है, मुंडो जो रहा तो लाल योड़ा थपड़ा खा करके टमाटर में जड़ मुंडो हो गयो, जबड़ा दुखन ला गया, सांस फूल गया, भूखे प्यासे में गर्मी के कारण से हाल बेहाल होने लगा। अब वहां बाहर गली के बाहर निकल गए, हे राम मारे में कैडी बीती रहे, हे राम मारे में कैडी बीती रहे, हे राम अबे राम याद आऊ लोगों हो, पहले याद नहीं आया, अब राम का नाम याद आया है, अब वो खूब याद आवे भैया। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे होई, तो भाई याद कौन करता है सुख में उनको, नहीं तो इसके लिए सजा भोगनी पड़ी। अब दुखी होते होते चले गए नदी के किनारे जाके बैठ गए पेड़ की छाया में, अब मैं कटे जाऊं कहीं करूं क्या करूं, हे भगवान क्या दशा होगी, कहां जाऊंगा, हे प्रभु हे भगवान, हे भगवान आप ही अब तो धनी हो, अब ऐसे जीने से मर जाना ही ठीक है, अब आपके शरण में ले लो नाथ। बस ऐसे बैठा बैठा राम जी ने याद करे नदी के किनारे, इतने में महात्मा जी को फिर दया आ गई, भाई थोड़ी रोटी ने सेक सकन चार कर पाची खीरा मा तो बेगी उठावे नहीं तो मर जावे है नहीं, राखे को नहीं ज्यादा हो, खाने लायक योगी बनाने के लिए अंगारा में देना जरूरी है, लेकिन ज्यादा अंगारा दे दो तो जल जाएगी। संत महात्मा दयालु होते ना, बाबा जी को दया आ गई, साधु बनकर के जोड़ी लेके उन्हें सेठ जी के पास में गए, सेठ राम राम। अब तो सेठ जी खड़ा होकर के राम महाराज राम राम महाराज राम 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 महाराज, बाबा जी के चरणों में पड़ कर रंडोद कर ली, महाराज रंडोद महाराज। अब तो राम राम ने बोली छुटे को नहीं जबान सुबह भाई, क्या तो एक बार 20 बार बोले तो एक बार जवाब नहीं, आज एक बार बोले तो 100 बार बोलने के लिए तैयार। अब बाबा जी वहां सेठ जी से कहने लगे, सेठा परसों में थाने आयोजन था तो मैं कितने हिला पाड़िया थे, राम राम सुनी करी महाराज, बेजो खराब हो गयो, ओ मैं राम राम नहीं कह जिन्हें दंड भोगियो, आज मारी घरी दुर्दशा होगी, मैंने लोग घरों बारे काट दियो, कचेरी में थाने में सब जगह मारी दुर्दशा हो गई, अपमान हुआ है, अब तो महाराज कटे रो गोरियो नहीं, अब तो आप मैंने चेलो बना लो, आपको चेलो बना लो, आप अपना चेला बना लीजिए, शिष्य बना लें, क्योंकि भाई नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी और मूड मुडाय होए सन्यासी, मत मुंडाय हो कहने बताओ, मूड मुडाया तीन गुण मिटे टाट की खाज, खावण ने चौको मिले लोग कहे महाराज, एक उस्त्र फिराना पड़े और कई को करना पड़े, इतने मुकाम बन जावे, अब तो आपका शिष्य बना लीजिए महाराज। अरे सेठा घरे कई काम है नहीं, अभी तो बेटा ने ब्याह करना, वो करना, बायरा भरना, महाराज भरी दी मारे होगी मार तो, अब किना घर किना बेटा किना बार हैंगन देख लिया, हैंग नकली महाराज, हैंगी धोखेबाज है सब, कोई कोई रा को नहीं महाराज, हैंग दिखावटी है महाराज, अब ज्ञान के बढ़िया लागो होटा पड़िया जना होटा रे ज्ञान बढ़िया हुआ करे, इस वास्ते उपदेश को ज्ञान लागे को नहीं, लेकिन होटा पड़े जने ज्ञान चोटी करे चमचम, हाँ पहले पढ़ावता जना चोटी खेचता जना पढ़ी हो रही याद होती, आजकल चोटी मास्टर हाथ नहीं लगा सके, चोटी रखे तो हाथ लगावे लगावे कहीं, पर लगावे तो अगर सीधा रिपोर्ट हो जावे कि मारे छोरा ने थप्पड़ क्यों मार दियो, जेड़ा थप्पड़ नहीं मार दिया तो एड़े लकड़ आई पे ऊंधी ऊंधी पाता ही की ऊंधे काम करना ही की एड़े पचे कारणा में खरी पे जेड़ा रमाइने बे गई जाए उठे हवा खाई हवा मेलवी, ऐसे बार बार वो दुखी होकर रोने लगा। महात्मा जी ने कहा सेठा आप यदि घर में जाना चाहते हो तो वापस घर में भेज दूं, हे महाराज घरो नाम मत ले जो, घरो नाम मत ले जो, देख लिया घर वाला ने कोई रा कोनी काम रहा महाराज, अरे वह लुगावड़ी कम से कम बचाने वाते नेड़ी आगी नहीं आई ऊपर बैठी रही, उन्हें शर्म नहीं आवे। मैं इतना वर्षा तो रही हूं, लेकिन हमारे साथ में इतना धोखो करियो, बेटा खुद कूटिया मैंने, नौकर कूट रहा तो बेटा हमारे साथ मिल रहा है। दिक्कत है महाराज, एड़ा नौकरा ने, एड़ा बेटा ने, एड़ा लुगैया ने, एड़ा स्टाफरा ने, परिवार ने, सब ने लंबा लंबा हाथ जोड़ो खुले हो हाथ महाराज, मन तो हाफ हाफ चलना मिले लो। सेठ जी ने महाराज जी फिर समझाने लगा और कहने लग गया, सेठा अगर थाने घरे भेज दो, थाने कोई नहीं कूटे तो महाराज नहीं कूटे भेज दो, जो चीजें कही तो फिर चीजें कही, लेकिन मैं क्यों जी करता वो तो थाने आप बात कर सकू मैं महाराज, कहीं कर लो बोलो सा। अब हाथ जोड़ सामने खड़ा हो गया, एक तो दे देखो रोजी ने 2 घंटा राम राम री माला फेरनी पड़ेगा, 2 घंटा 2 घंटा याद रख, 2 घंटा राम राम की माला फेरनी है याद रखना हमेशा। और आपके पास में जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में से आधी संपत्ति परमार्थ में, विद्यार्थियों की सेवा में, गौ सेवा में, और मरीजों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, अनाथों की सेवा में लगा दो, तो आप चुपचाप घर में चले जाना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और ये नहीं करोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे, तैयार है समझ लो, इन थोड़े डंडों से यमराज के डंडे आपके दूर हो रहे, याद रखना। मैं ही वो बेरुपया बन करके आया था और आपको सावधान करने के लिए मैंने ये काम किया है महाराज। न्याल कर दिया, आंखें खोल दी, अभी तो आप क्या हो जाओगे, 2 घंटा के 4 घंटे माला फेर, 4 घंटे भजन करूंगा, क्योंकि संसार की बात तो असली तस्वीर समझ में आ गई, अब मुझे संसार में कुछ लेना देना है नहीं। महात्मा जी ने कहा, जाते समय एक बात है, घर में जाके किसी से कहना मत तो आपने पिटाई क्यों की, कूट है क्यों थे, मैंने हो कई जो मत घर वाले चुपचाप रह जो उठे, जो योजना सहन कर ले, जो जहर का घूट पी करके रह जैसे रह जाना, किसी से कुछ कहना मत, जो आ गया महाराज। सेठ जी चुपचाप घर में चला गया, कोई से कुछ कहा नहीं। और फिर अब लेकिन जबान पर भगवान का नाम आ गया था, राम 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 रसनासु रटबो करे, 8वां पौर अभंग, रामदास उन संत का राम न छाड़े संग, वो दशा हो गई। अब तो हर समय, अब दुकानदारी पे ज्यादा बैठे रहते थे, वहां कम बैठना और हरि भजन ज्यादा करना, ये उनकी आदत बन गई। परमार्थ में पैसे लगाने चालू कर दिए, हाथ खुले हो गए, और इस प्रकार से संसार में माया मोह में उनका जो मोह था वो कम पड़ गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। ऐसे ये वैभव लक्ष्मी जो माया आती है तो आत लात उड़ देते है, आते समय तो छाती में लात लगाती है तब कुछ दिखता नहीं, पर गमन पाद ग्रीवा झुके मगजाई ढह जाए, जाते समय गर्दन में लात मारती है, फिर माता ऊंचा करना हाथ में नहीं है, मैं माया दुलतिया। इसी माया का उपयोग यदि परमार्थ के लिए कर दिया जाए, दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए, भगवान के लिए लगा दिया जाए, तो वो माया ही भगवत रूप बन जाएगी। अरे गीता जी में ओ जो आती है ना, भगवान का जो निवास स्थान कहां बताया है, जहां अर्जुन को ये बातें बताई थी ना, यहां भगवान ने एक विष्णु क्या कहते हैं वो रूप बताया, भगवान उसके पहले बताया ना कि आप कहां कहां रहते हो, ये जब अर्जुन ने पूछा तो विभूति योग, विभूति में कौन सी जगह किस में कह रहे, तो वहां पर भगवान ने कहा कि धातुओं में मैं सोना धातु, स्वर्ण में मेरा निवास है, और सोने में ही परीक्षित राजा ने कलयुग का निवास किया, तो सोने में कलयुग भी है और भगवान भी है, दोनों का निवास स्थान है। पर वो माया का उपयोग परमात्मा के लिए होता है तो उसके लिए भगवान का निवास है, और संसार के लिए स्वार्थ के लिए होता है तो उस माया में कलयुग का निवास हो जाता है। दोनों का है, लेकिन इसमें दोनों मौका देखेंगे, जैसा साथ मिलेगा वैसा उनका सामर्थ्य बन जाएगा। तो विभू ब्रह्म है, उन विभू के साथ में ब्रह्म का संबंध जोड़ दिया, परमात्मा विभू ब्रह्म बन गए। तो मतलब अपने पास में संपत्ति पदार्थ कोई भी है तो जो पदार्थ है इस पदार्थों को भी परमात्मा के साथ में जोड़ करके रखो, कोई नुकसान नहीं है, केवल अपना आप में स्वामीपना करना ही इसमें नुकसानदायी है। अरे लक्ष्मी को जानते हैं कि ये लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, तो भगवान विष्णु की पत्नी है उसको हम अपने बताएंगे मेरी है मेरी मेरी है तो जूते खाने पड़ेंगे। अरे संसार में दूसरे की पत्नी को मेरी बताएंगे तो दंड भोगना पड़ता है, तो साक्षात भगवान की पत्नी को हमारी कहेंगे तो दंड नहीं मिलेगा क्या? निश्चित बात मिलने का है जिनकी जिनको अरबी है रामा वंचे काल, मेरा ना ही राम का यो घर धन व्यवहार, मेरे है ही नहीं। तो इस प्रकार विभव युक्त अर्चाद मत प्राप्त गुरु प्रसाद सो नीके कर कहत हूँ रामा निज सिद्ध आद, ये विभु ब्रह्म है। वैभव संपत्ति के रूप में ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो तो वो मिलेगा। अब रहा अर्चा ब्रह्म, पृथु हनुमान समर एक नरपत दास हूँ 25 विद्र धिन भरत पुनस विभीषण अर्चन आशीष मुनिता नार तीन गिन कन्या सातु पंचमात उद्धव अक्रूर छिदामा साधव आनंद विख्यात, इन अर्चन सीधा किता ब्रह्मानंद विलास जन अज्ञा प्राप्त सकत सतगुरु रामादास। भगवत भाव से पूजन करके जो पूजन हम कर रहे हैं वो साक्षात परमात्मा का ही पूजन हो रहा है। जिस किसी का भी पूजन कर रहे हैं तो सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रतिगच्छति, जहां जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसमें हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा के पास में ही पूजा पहुंचनी चाहिए तो परमात्मा उसके द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे लेटर बॉक्स कहीं भी लगा हुआ हो उस लेटर बॉक्स में हम अपना पत्र डाल लेंगे, यदि उसी लेटर बॉक्स में हमने कलकत्ते का पत्र डाला है तो कलकत्ते पहुंच जाएगा, मद्रास का पत्र डाला है तो वो मद्रास पहुंच जाएगा। लेटर बॉक्स एक ही है, ठिकाने अलग अलग हैं तो भी वो सब वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ठिकाना उसमें होना चाहिए। तो हम पूजन जिनके लिए कर रहे हैं उसमें परमात्मा का पूजन होना चाहिए। गुरु महाराज का पूजन करते हैं तो उसमें साक्षात परमात्मा का पूजन कर रहा हूं ऐसा भाव रख करके पूजा करोगे तो वो परमात्मा स्वयं स्वीकार करेंगे, स्वयं परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। भाई इनकी जहां तक पहुंच है इन्होंने कर लिया, आगे का काम मुझे करना है, हम करेंगे। वैसे अर्चा ब्रह्म के द्वारा हम परमात्मा का पूजन कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। अंतर्यामी परमात्मा जो ब्रह्म है, अंतरागत परमात्मा या जिसे अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं, शिम भव दृष्टा अंतरजामी रमता समता सदगुरु स्वामी व्यापक ब्रह्मण सब भरपूरा माए बार आत्मनूरा चंदानंदा ब्रह्म अखंडा तोलन मोलन माप अमंडा सर्वे सारो एक उदोता खिरतव दोषा ना ही छोता पूर्ण ब्रह्म प्रकाश सब घटा घाट बाद कुछ नाई सो सदगुरु परमात्मा ज्ञान दृष्टि के माई। अंतर्यामी परमात्मा जैसे प्रत्येक प्राणी के हृदय के भाव को पहचानते हैं और पहचान करके उसके भाव के अनुसार वे सारा कार्य करते हैं। मान लो जहां कहीं भी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अब वो खुद तो वहां पर मौजूद नहीं है, फिर भी जब हम इनका करते हैं तो अंतर्यामी होने के नाते वे यहां के हमारे उन भावों को पहचान लेते हैं। तो जैसे परमात्मा हमारे हृदय के भाव को पहचानते हैं उसी प्रकार हम यदि गुरु महाराज के साथ में संबंध जोड़ करके अपना संबंध कायम रखेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय के भाव को अवश्य ही पूरा करेंगे। गुरु पूजन के माध्यम से हम जो काम कराना चाहते हैं वो कर देंगे। कई भक्तों ने लिखा है गुरुपद पंकज पूजता 14 लोग पूजाए, 14 लोगों की पूजा हो जाती है उन्हें, क्योंकि जब 14 लोग में परमात्मा का निवास है तो परमात्मा अंतर्यामी होने के नाते चाहे जिस किसी भी लोक में जाओ ना पूजन करो तो उनकी पूजा होती है। भागवत के पंचम स्कंद में जहां ये भूगोल का वर्णन आता है वहां पर बड़ा लंबा चौड़ा है, किस जगह अमुक रूप में भगवान की पूजा होती है, उस जगह उनकी होती है, उस जगह उनकी होती है। अब सब जगह उनकी पूजा होती है तो वास्तव में अंतर्यामी परमात्मा सब जगह एक ही व्यापक है, वहां दूसरा है अलग दूसरी जगह दूसरा, ये नहीं वो आज बने हैं जब से एक ही बने हैं, वो कोई बदलने वाले नहीं। संसार की मिनिस्ट्री तो समय समय पर बदल जाती है, लेकिन उनकी सृष्टि कभी बदलती नहीं, सदा कायम रहा करती है। इसलिए वो अंतरे में परमात्मा हमारे भाव को पहचान लेते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु महापुरुषों के शरण में जाकर के अपने हृदय के भाव को निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए, और पवित्र बना करके निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, ऐसे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस अंतर्यामी भावना के माध्यम से अंतर्यामी परमात्मा देख रहे हैं यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, ये भाव रख लो, जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा देख रहे हैं, उनसे छुपा हुआ नहीं है, जहाँ के जो कुछ कर रहा हूँ वो उनको दिखाई दे रहा है। अब जो उनको दिखाई दे रहा है तो अब उनसे मैं छुप करके कैसे रह सकता हूँ। तो ये अंतर्यामी भाव के साथ में हम जुड़े रहेंगे तो आत्म दीदु देखिया अखिलेश्वर परमेश, आत्मभाव से सबको अपने इस परम जगत चराचर में परमात्मा को देखो। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश सब घाट वाद कुछ नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसमें किसी प्रकार कोई छोटा बड़ा या हल्का भारी नहीं है। उस परमात्मा को बारंबार वंदन है। ये सब गुरु महाराज से होने वाली कृपा प्रसादी से अपने को सहज जो सरल मार्ग मिलता है परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने के लिए, इस संबंध को जोड़े रखें और अपने आप में आनंद का अनुभव करें। बस इसी प्रश्न के साथ में आज का मध्यान्ह विश्राम अपने विश्राम कर रहे हैं। अगला विश्राम लगभग करीब आधा घंटा के लिए विश्राम करते हुए अगला प्रसंग, उसके बाद में वापस गुरु चरणों का चिंतन करते हुए वापस चालू करेंगे। बोलिए राम जी महाराज की।
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण।
सतगुरुदेव की।